نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم دسویں پارے کا آغاز کریں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ سورت کے آغاز میں سوال اٹھا تھا یسلونک عن الانفال، غزوہ بدر سے حاصل شدہ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام کے ذہن میں سوال آیا اس مال کا کیا کیا جائے، کیونکہ پہلے دور میں مال غنیمت کے بارے میں قانون فرق تھا۔ بہت پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال کو کھا جاتی تھی جسے یہ کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے دشمن سے حاصل کرنے کے بعد۔ اسی طرح جس دور میں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، مکہ والوں کا رواج تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تو اس کے بعد لوٹ مار شروع ہو جاتی، جس کے ہاتھ میں جو آتا وہ اس کا سمجھا جاتا۔ اسلام اس طرح کی لوٹ مار کو پسند نہیں کرتا، تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں۔ اس پر جب پوچھا تو شروع میں بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ ہاں ہاں اس کو دے دو، جو بات کی گئی وہ کیا کی گئی کہ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کی اصلاح کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ چار کام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب انسان کے تزکیے کے بغیر اس کو مال مل جاتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تزکیے کے بغیر جب انسان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی صدارت یا وزارت مل جاتی ہے، تو وہ فائدے کے بجائے نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ تقریباً 40 آیات میں خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کا تزکیہ کرنے کے بعد اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے۔ دوسری بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جو مال خود کمائے اس میں سارے کا سارا اس کا اپنا نہیں، جیسے انسان کماتا ہے تو اس کے اندر بھی دوسرے لوگ حصے دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑے سے سپاہی جا کے لڑے تو جو حاصل ہوا وہ سب ان کا نہیں، اس سے اسلام کا، دولت کا پھیلاؤ اور اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دلیل بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ باتیں عام لوگوں کے لیے ماننی آسان نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، مراد ہے غزوہ بدر، تو یہ حصہ پھر بخوشی ادا کرو، یہ مراد ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ لو جی لڑے تو ہم تھے اور مال غنیمت گھر بیٹھے لوگوں کو بھی مل گیا اور فلاں کو بھی مل گیا، تو کہا کہ جس اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ مال ملنا، فتح غنیمت کا ملنا، مال فیح کا ملنا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کا ایک منظر، اذن تم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ کون کس طرف تھے؟ مسلمان وادی کے اس طرف تھے یعنی بدر کے پاس تھے، اور دوسری جانب دشمن تھا، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ ادھر والی طرف کون تھے؟ ابو جہل کا گروہ، اور قافلہ کون سا تھا؟ ابو سفیان کا مال و اسباب سے لدا ہوا گروہ۔ بالکل اچانک معاملہ ہوا تھا، مسلمانوں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تمہیں پہلے سے کہیں پتہ ہوتا یعنی اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ ہونا قرار پا چکا ہوتا تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، یعنی اگر پتہ چل جاتا 313 کے مقابلے میں 1000 آ رہے ہیں جدید اسلحے سے لیس، تو تم تو اسی وقت وڈرا کر دیتے، تم تو گیو اپ کر دیتے۔ لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اس کو ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے کے لیے حالات خود بخود کریٹ کر لیتا ہے۔ لوگوں سے پوچھ کے کام کیے جائیں تو شاید کبھی بھی کوئی کام دنیا میں نہ ہوتا، نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتی۔ تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی سمجھاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم پورے اسباب استعمال کرتے ہیں پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پورے اسباب استعمال کرتے ہیں پھر بھی شکست ہو جاتی ہے، तो उस मौके पे अल्लाह ताला हमें कुछ और सिखाना चाहता है कि जो जिए वो दलील के साथ जिए, जो मरे वो दलील के साथ जिए, और जिसको ज़िंदा रहना है वो रोशन दलील के साथ जिए। यकीनन अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। अल्लाह ताला के हर काम के अंदर कोई ना कोई हिकमत होती है। फिर अल्लाह ताला कुछ ग़ज़वा बदर की मज़ीद बातें बताते हैं। इस यूरी कुमूहुम इज़ तकई तुम फ़ी आयुनिकुम क़लीला, और याद तो करो वो वक्त जबकि नबी खुदा उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा कर दिखा रहा था। यानी अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, और याद करो वो वक्त जबकि नबी अल्लाह उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था, यानी मुसलमानों को काफिर थोड़े दिख रहे थे। अगर कहीं वो इनकी तादाद ज़्यादा दिखाता तो तुम लोग ज़रूर हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुमको बचाया। यकीनन वो सीनों का हाल जानने वाला है। यहाँ से भी इंसानी कमज़ोरी का तस्करा है कि इंसान बहुत बड़ा हदफ़ देकर हिम्मत हार बैठता है। बस दफ़ा इंसान को जब बहुत बड़ा हदफ़ मिले तो उसकी सोई हुई कुव्वतें भी जाग जाती हैं, वह एक नए अज़्म से उठता है, चलो जी करते हैं, हो जाएगा। लेकिन जब कभी कभी सुस्ती छाने लगे, प्रैक्टिस ना हो, या हदफ इतना बड़ा हो कि जो अनअचीवेबल लगता हो, तो लोग फिर उसके लिए हिम्मत ही नहीं करते। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ अपने मावराई असबाब को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को काफिरों की तादाद मुख्तलिफ दिखाई, और बिल्कुल यही दूसरी तरफ भी हुआ। और याद करो वो वक्त जबकि मुकाबले के वक्त अल्लाह ताला ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया था और इनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी अल्लाह इसे ज़हूर में ले आए। दोनों तरफ मामला बिल्कुल फ़र्क था। इसी को कहते हैं कि आंख देखी चीज़ ना इंसान को समझ आए। ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। एक इंसान है, उसको वो काम बहुत छोटा लगता है, कहता है कोई मसला ही नहीं है। दूसरे को वो काम पहाड़ लगता है। ईमान का भी फ़र्क होता है, हिम्मत का भी फ़र्क होता है। जितना ईमान बड़ा होगा अल्लाह का काम उतना आसान लगेगा, जितना ईमान कमज़ोर हो चुका होगा, बीमार ईमान होगा, उतना ही वो काम हमें मुश्किल लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, सारे मामलात बिलाखिर अल्लाह ही की तरफ पलटाए जाते हैं। अब यहाँ बहुत ही खूबसूरत हाईलाइट करने के काबिल आयात हैं ये सारी, कि शिकस्त को फतह में बदलने वाले इकदामात क्या हैं, या मैदान जंग में जाएँ तो मदद कैसे मिलती है, या कामयाबी कैसे होगी, दुश्मनों पे गालिब आने के राज क्या हैं। लोग कहेंगे F-16 ले लो, उनके लिए बुलेट ले लो, एटॉमिक एनर्जी बन जाओ। अल्लाह ताला इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात बताते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ईमान लाने वालों, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो। ये पहली चीज़ है, अल्लाह के काम को शुरू करना और साबित कदम ना रहना, ये अल्लाह के दीन को ढहाने के बराबर होता है। ये ऐसे जैसे बीच रास्ते में आकर कोई ड्राइविंग सीट से उठ जाए कि भैया मैं नहीं चला सकता, या कोई जहाज़ चलाता चलाता बीच में फ़िज़ा में जहाज़ को छोड़ के उठ जाए कि अब मैं नहीं कर सकता। वहाँ तो 4-6 लोगों की जान जाएगी या 100-50 की जान जाएगी, लेकिन जब दीन वालों के अंदर इस्तकामत नहीं होती तो बहुत सारे लोग दीन से दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर दिल में कमज़ोरी आए, खौफ आए, तो फिर वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की याद बंदे को इस्तकामत देती है। जब भी कभी नेकी के काम में सुस्ती आने लगे तो जिक्र करें, दुआएं पढ़ें, अल्लाह ताला मेरा दिल जमा दे, अल्लाह ताला मैं क्यों सुस्त हो रही हूँ, अल्लाह ताला मेरे अंदर क्यों इस तरह सुस्ती आ रही है, मुझे क्या हो गया है। इस तरह जब अल्लाह को याद करते हैं, एक तो जिक्र और दुआओं की सूरत में, दूसरा वैसे ही अल्लाह की याद बंदे के दिल को मोहब्बत और जोश से भर देती है। कल अल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। फलाह होगी कब? जब ये दो काम होंगे। तीसरा काम, वातीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये है वो चीज़ जो मोमिन को वाकई अल्लाह के हाथों में अपना हाथ देने के काबिल कर देती है। आंखें बंद करके मान जाओ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह ने कहा ठीक कहा, जो रसूल ने कहा सच कहा। चौथी चीज़, वला तनाज़ाउ फतफशलू व तज़हब रीहुकुम वस्बिरु, अगली चीज़ क्या है कि आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये है वो चीज़ जिसने हर दौर में मुसलमानों को नुकसान दिया, और वो है आपस का तफरका। आज गली गली एक ही कहानी है, हर दूसरा बंदा यही बातें कहता सुनाता दिखता है। किसी से बात हो रही थी, कहने लगे कि मैं तो बहुत थक गया, फ्रेंड हो गया मैं इस वक्त, बहुत दिल बर्दाश्त हूँ। किस से? दीनदारों से, मस्जिदों वालों से। बड़े शौक और तपाक से मस्जिदें बनाते हैं, और 4-6 माह नहीं गुजरते तो झगड़े और लड़ाइयाँ और वो, और मैं तो बहुत थका हूँ। मैंने कहा कि देखिए, बात सिर्फ जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अल्लाह के नबी ने पहली मस्जिद बनवाने से पहले 13 साल तरबियत की थी। मक्का में 13 साल मारें खाएं, तकलीफ़ें सहीं, कुर्बानियाँ दीं, हिजरतें कीं, پتھروں پہ چلے، پھر پہلی مسجد بنی تو اس کے اندر ان کو کام ملا، لیکن آج حال کیا کہ نہ تربیت ہے، نہ تزکیہ ہے، نہ خدا خوفی ہے، نہ علم ہے، صرف چار چھ لفظ پڑھنے یا چار چھ جملے بولنے سے لوگ اس کو دیندار سمجھتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے جب میدان میں کودو۔ یاد رکھیے، کبھی بھی وہ گروہ کامیاب نہیں ہوگا جو اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد نہ کرے، جو آپس میں ایک دوسرے پہ ہی شک کرتے پھریں، سارا میرے ہی اوپر کام ہے، یہ میں ہی کروں گا، یہ تو میرا نام تھا، کرسی میری تھی، فلاں اس کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں تزہوری حکم، اور آج مسلمان امت اس کی پوری منہ بولتی تصویر ہے کہ آج ہماری ہوا اکھڑ گئی، آج کوئی ہم سے نہیں ڈرتا، کسی کو ہم پر اعتماد نہیں، اور اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگلا کام، وصبروا، اور صبر سے کام لو۔ یہاں صبر سے مراد صرف وہ صبر نہیں ہے جو بیماری اور دکھ ہے، یہ دشمن کے مقابلے میں جمنے کا صبر ہے، یہ خواہشات کو قابو میں رکھنے کا صبر ہے، تمہیں نیچے کی کرسی پہ بٹھا دیا، تم سے چھوٹے کو بڑی پہ ڈال دیا، یہ ہے صبر۔ اللہ کے حکموں کو مانتے جاؤ، نبی کے فیصلوں پہ لبائی کہتے جاؤ، یہ جو صبر آئے گا ایسے لوگوں کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ پھر کرنے کے بعد کہا اب کیا اور نہ کرو، اگلی چیز، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور دیکھو ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے۔ دکھاوا، جب دین کے ساتھ دکھاوا آ جاتا ہے، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے ممبر، بڑی بڑے مینار، اور ہماری مسجد سب سے بڑی، یہ پہلی مسجد، یہ مسلمانوں کی بڑی جماعت، ہم پہلا گروہ، تو اس سے پھر اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ جب اپنے نام اللہ کے نام سے بلند ہونے لگ جائیں تو پھر اللہ کیا کرے وہاں، اللہ کو ضرورت نہیں مدد کرنے کی، پھر آپ خود کیجئے۔ لیکن ہوتا کیا کہ شیطان جب ایسے کام لوگ کریں تو ان کو خوبصورت بہت دکھاتا ہے، ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہو گئے، اور شیطان ان کاموں کو خوبصورت ناموں سے پیش کرتا ہے۔ وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی آنکھوں میں، ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے، اور ان سے کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، انی بریم منکم انی ارا ما لا ترون، میں تم سے بیزار ہوں اور تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور انی اخاف اللہ، اور دیکھو مجھے تو اللہ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے، کیونکہ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ ایک قبیلہ تھا مکہ والوں کے ساتھ، اس کی دشمنی تھی، پیچھے ہم اس کی تفصیل کر چکے۔ جب ابو جہل آ رہا تھا تو خیال آیا کہ کہیں سے یہ قبیلہ ہمارے پیچھے بچوں اور عورتوں پہ حملہ نہ کر دے، تو اس وقت وہ اس قبیلے کے سردار سراقہ کی صورت میں آیا اور کہنے لگا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اصل میں شیطان تھا، لیکن مکہ والے سوچ رہے تھے کہ یہ وہ سردار ہے، اور وہی ہوا جب میدان جنگ میں فرشتے آئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ کسی نے پیچھے سے پوچھا کہ ارے سراقہ تم کہاں گئے، تو پھر اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں تم جو نہیں دیکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان عین وقت پر دغا دینے والا ہے، اس کے ڈھکوسلے، اس کے وعدے بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی اللہ کے ڈر کی بات ہے۔ یہ آج جملہ ہم نہیں بولتے انی خاف اللہ، شراب پیتے ہوئے کوئی کہ اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اللہ کی پسند سے مختلف لائف سٹائل چوز کرتے ہوئے اگر کوئی کہتا پھر مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے یہ جملہ تو شیطان بھی بول رہا ہے، اور خدا بڑی سخت سزا والا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، جب اللہ کی سزا کا ڈر ہے تو گناہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ پھر آگے کچھ منافقوں کی باتیں، آپ دیکھیے کہ میدان جنگ جو ہوتا ہے نا، یہ پول کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ عام حالات میں ہم سب چھپے ہوئے ہیں، لیکن ذرا بڑا ٹاسک آ جائے گا، ذرا دین کی کوئی قربانی ہوگی، کوئی بڑا کام ہوگا، تو اس وقت ہمارا اصل دکھتا ہے، کون کتنی مشکلوں میں ساتھ دیتا ہے، یہی ہے اس کا مستقبل کہ وہ کل کہاں پہنچے گا۔ جو اپنی سہولت کو دیکھ کر دین کی مدد کرتے ہیں، وہ ساری زندگی بس کرتے رہیں گے اتنی جتنی ان کا دل چاہے گا، لیکن جو اس وقت مدد کرتے ہیں جس وقت اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگ پھر دوسروں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جس طرح شیطان میدان جنگ میں تھا، اسی طرح کچھ منافق بھی وہاں موجود تھے۔ اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اس کے بعد میدان جنگ کی وہ جھلکیاں جب دشمنوں کو تہ تہ کیا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ترائز یتوفی الذین کفروا الملائکہ، काश तुम उस हालत को देख सकते जब फरिश्ते मक्तूल काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, वो इनके चेहरों और इनके कूलों पर ज़र्बे लगाते जाते थे और कहते थे लो अब चखो जलने की सज़ा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अय्दीकुम, ये है वो सज़ा जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पहले से मुहैया कर रखा था। और देखो अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिलअबीद, बेशक अल्लाह तआला अपने बंदों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं। कोई मत सोचे कि अल्लाह ने किसी को नाहक मरवा दिया, अल्लाह कभी किसी को नाहक नहीं मरवाता, उसके बंदे हैं, उसको उनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मरवा के बदर के कुएं में फिकवा दिया और अब इनका ताल्लुक जोड़ा फिरौन की आल से। कदा भी आली फिरौन, इसी तरह का मामला आले फिरौन और इनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयात को मानने से इनकार किया। अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इनको पकड़ लिया। अल्लाह कुव्वत रखता है और सख्त सज़ा देने वाला है। ये अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हुआ कि जो कोई नेमत अल्लाह ने किसी कौम को अदा की हो वो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक के कौम खुद अपनी नेमत को या जब तक के वो कौम अपनी हालत को या अपने तर्ज अमल को नहीं बदल देती। इसी को शेर में कहा गया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। आगे फिर आएगी आयत इंशाल्लाह एक दो सूरतों के बाद, तो पता क्या चला कि कौमों के साथ वही होता है जो वो खुद अपने साथ करते हैं। अल्लाह ताला कभी किसी को नहीं ऐसे पकड़ता, क्योंकि वन्नल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला को ये सब कुछ पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसे ही इनके साथ करना है। और आले फिरौन और उनकी कौमें जो पिछली थी, अब देखिए कि उनकी बार बार यहाँ मिसाल आ रही है, क्योंकि बदर वाले भी कुएं में फेंके गए थे, पानी था, और फिरौन को भी पानी में डुबोया गया था। ये कदर मुश्तरक है इन दोनों में और दोनों ही सरकश थे। अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा और फरमाया कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो सारे के सारे ज़ालिम थे। इसके बाद काफिर की अल्लाह की नज़र में क्या औकात है, इसको इस आयत से समझ लीजिए। इन शर्रद्दवाबिंदल्लाहिल्लसीना कफरू फहुम ला युमिनून, यकीनन अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर चलने वाली मखलूक में सबसे बदतर वो लोग हैं जिन्होंने हक को मानने से इनकार कर दिया। चलने वाली मखलूक ज़रा सोचिए, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, मेंढक, कितनी मखलूकात हैं। अल्लाह कहते हैं इन सब से ज़्यादा घटिया चीज़ काफिर है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाते, वो हक को नहीं मानते, और ख़ास तौर पर इनमें से वो लोग जिनके साथ आपने माहदा किया है नबी, वो तो हर उस मौके पर इसको तोड़ते हैं और इनको ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है। बस अगर ये लोग कहीं लड़ाई में मिल जाएं तो इनकी ऐसी खबर लो कि इनके बाद जो दूसरे लोग ऐसी रविश अख्तियार करें तो इनके भी होश खुल जाएं, इनको भी समझ आ जाए कि जिसने भी वादा खिलाफी की उनके साथ ऐसे ही मामला होना चाहिए। वहीं मतखाफन नमिन कौमिन खियाना, तवक्को है कि इन बदहदों के इस अंजाम से वो सबक लेंगे। और अगर तुम्हें कभी किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो उसके माहदे को ऐलानिया उसके आगे फेंक दो, मुराद क्या है कि तोड़ दो। फम बिजिलहिम अला सवान, यहाँ से पता चल रहा है कि ढके छुपे अहद नहीं तोड़ने चाहिए। इस्लाम क्या चाहता है कि वादा करो, क्लियर कट करो, प्लेच है, वादा है, कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, सबको बताओ, उसकी विटनेस मौजूद है, और जब तोड़ो तो बता के तोड़ो, ढके छुपे बात नहीं करना, पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपना। और जबकि दुश्मनों की बात इससे बिल्कुल फ़र्क थी, वो ऊपर से दोस्त बनते थे, अंदर से दुश्मन बन जाते थे। अल्लाह के नबी का ये मिजाज नहीं था। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, बेशक अल्लाह ताला खाइन लोगों को पसंद नहीं करता, खयानत वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन लोग अल्लाह के बारे में भी गलत फहमियों में रहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यक्सबन्नल्लज़ीना कफरू सबकू, हक को छुटलाने वाले या हक का इनकार करने वाले इस गलत फहमी में न रहें कि वो बाजी ले गए। बाजी कैसे ले जा सकते हैं, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। और तुम लोग जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि इसके ज़रिए से अल्लाह और अपने दुश्मनों को और इन दूसरे दुश्मनों को खौफजदा करो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा। और वान तुम ला तुज़लमून, तुम पर हरगिज़ भी जुल्म ना होगा। अब यहाँ से अल्लाह ताला एक और अंदाज़ बताते हैं कि दुश्मन है लेकिन अगर सुलह का इरादा करे तो क्या करो। वइन जनहु लिस्सल्म फजनहलहा वतवक्कल अलल्लाह, और नबी अगर दुश्मन सुलह हो सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी इनके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नियत रखते हो तो फिर आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, क्योंकि वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने एक एक मुतवक्के सूरत हाल पेश कर दी, ये करें तो ये करो, वो करें तो ये करो। यहाँ से पता चलता है कि हमारा दीन सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं सिखाता। अब ये जितनी आयत हमने अभी तक पढ़ी, इसमें शायद ही कोई नमाज का तस्करा आया हो, कोई भी बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए कि मैदान जंग में कैसे लड़ना, क्या दुश्मनों से मामला करते हुए मामला करना है, ये भी अल्लाह ही बताएगा। और किस तरीके से ज़िंदगी, खाना पीना पढ़ना लिखना, ज़िंदगी का हर मामला अल्लाह की ज़ात जो है वो बंदे को सिखाती है। इसीलिए कहा हुवल्लज़ी अय्यदक बिनसरिही वबिलमुमिनीन। अब आगे बहुत ही खूबसूरत आयते हैं जिसमें ईमान वालों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा बताया जा रहा है। फरमाया, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी ताईद की। यानी ये नबी आप क्या थे, अकेले थे, यतीम थे, गुर्बत थी आपके पास, लेकिन अल्लाह ने आपको क्या कुछ दिया। खुद भी आपकी मदद की, ईमान वालों के ज़रिए आपके हाथ मजबूत किए। कैसे मक्का में आपको एक से दो, दो से तीन मिलते गए कि तन्हा चले थे और काफ़िला बनता गया। फिर अल्लाह ने मदीना वालों का आपका साथी बना दिया। और सबसे बढ़ के बात क्या है कि व अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, और इनके दिलों में अल्लाह ने आपकी मोहब्बत डाली और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम ज़मीन भर की सारी दौलत खर्च कर डालते तो भी इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े हैं। यकीनन वो अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। ए नबी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरोकार अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। क्या ये आयतें इंसान को सोचने पे माइल नहीं करती? किसकी उम्मीद है, किसकी आस पे इंसान दुनिया में गलत काम करता है? वो नहीं है साथ देगा, वो मुल्क साथ नहीं देगा तो ये हो जाएगा, उधर नहीं होगा तो इधर ये नहीं वो होगा। ये अल्लाह की ज़ात यहाँ बता रही है कि देखो, तुम्हें मैंने दूसरों से मदद दी, मैंने तुम्हारी मदद की, एक दूसरे से दिल जोड़ दिए, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्या आज के मोमिन के लिए और आज के मुसलमानों के लिए अल्लाह के ये वादे नहीं है? यकीनन है, लेकिन इंसान उसको प्रूव करे, साबित करे। फिर इसके बाद फरमाया, युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल। ए नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। क्यों? यह आयत बड़ी समझ के पढ़ने की, इसलिए आप लोग तवज्जो भरपूर रखिएगा। अगर तुम में से 20 साबिर हों, यदि 20 मुसलमान हो जो साबिर हों। सब्र कौन, किस चीज़ का? दुनिया का सब्र, अमल वाले, मैदान जंग की सख्तियों पे सब्र करने वाले, तो वो 200 पर गालिब आएंगे। क्या रेशो बना? 1:10 का, 20 और 200 का रेशो बना दिया। और अगर 100 आदमी ऐसे हों जो मुनकरीन हक में से 1000 आदमियों पर भरपूर होंगे, यहाँ भी 10 का 1 के मुकाबले में 10, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। पहले तो इतनी बात समझ लेते हैं कि सच्चे ईमान से मोमिन का वज़न होता है। जितना ईमान और तक्वा और तवक्कल इलल्लाह मजबूत होगा, उतना इंसान दूसरों पर भारी पड़ेगा। बस आप कहते हैं कि लोगों को गिनो, 1, 2, 3, 4, 6, 10। अल्लाह कहते हैं गिनो नहीं, उनका ईमान तोलो। ईमान तोलोगे ना तो तुम 1 को 3 गिन लो, दूसरे को 10 गिन लो, तीसरे को 15 गिन लो। ईमान के साथ इंसान की वैल्यू है। पहले दौर में ऐसे ही था, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक मुसलमान के मुकाबले में अगर 10 काफिर आ जाएं तो मुसलमान पीठ नहीं फेर सकता। असल में इसमें हुक्म भी बड़ा सख्त कि पहले दौर में अगर किसी जंग में अकेला मुसलमान है और उसके मुकाबले में 10 काफिर हैं तो भी वो मैदान जंग से नहीं पलट सकता था, पलटेगा तो गुनाहगार होगा। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ? ईमान कम हुआ, तवक्कुल कम हुआ, तक्वा कम हुआ। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अलान खफ्फफ अल्लाहु अनकुम, अच्छा अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया। और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमज़ोरी मौजूद है, अभी तुम लोगों में कमज़ोरी है। बस अगर तुम में से 100 साबिर हों तो वो 200 पर, अगर 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे। और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। अब क्या किया कि 1 के मुकाबले में 2, बस एक मुसलमान मैदान जंग में, उसके मुकाबले में 2 काफिर हैं तो ठीक है, 3 हुए तो अगर ये मैदान जंग छोड़ देता है या विड्रॉ करता है तो गुनाहगार नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है कि आज के दौर में शायद यही रेशो है। वक्त के साथ साथ जब ईमान कम हो जाता है, जब चीज़ें कम होने लगती हैं, तो फिर अल्लाह ताला सहूलत भी कर देते हैं। इसके बाद आयत नंबर 67 से लेकर अगली तकरीबन 71 तक जो आयात हैं, इनमें गज़वे बदर से हासिल हुए हुए कैदियों का तस्करा है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मा कान लि नबी अन यकून लहू असरा, किसी नबी के लिए ये जेबा ही नहीं कि इनके पास कैदी हों जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह ताला के पेश नज़र तो आखरत है और अल्लाह गालिब है और हकीम है। अब देख रहे हैं कि सूरत में बार बार अल्लाह के गालिब होने की बात है, क्योंकि जंग की बातें हैं ना, ताकि बता दिया जाए कि गलबा असल में अल्लाह की तरफ से आता है। और अगर अल्लाह का लिखा हुआ पहले ना होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है इसकी पादाश में तुमको बड़ी सज़ा दी जाती। बस जो कुछ माल तुमने हासिल किया इसको खाओ कि वो हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। बदर बहुत सारे मामलों में पहली जंग थी, जैसे कि हमें पीछे माल गनीमत की बात पता चल गई, इसी तरह बदर में 70 कैदी भी मिले थे। अब इन कैदियों के साथ क्या किया जाए, सहाबा कराम का ये क्वेश्चन था। अल्लाह के नबी को पहले कोई वाज़ह इशारा नहीं दिया गया, आप चूँकि मशवरे से काम करने के आदी थे, आपने अबू बकर सिद्दीक से पूछा। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी इनको मौका देते हैं, मार देंगे तो हमें क्या मिलेगा, चले इनसे फ़दिया लेते हैं, एक तो इस्लाम को पैसा मिलेगा और दूसरा ये कि हो सकता है वक्त के साथ इनमें से लोग मुसलमान हो जाएं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी भी कुछ यही राय है, रकीकुल कल्ब थे, नरमी थी, लेकिन याद रखिए इसमें कोई आप कमज़ोर नहीं थे। अबू बकर के बाद उमर फारूक से पूछा, हज़रत उमर की राय बिल्कुल फ़र्क थी। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ये कैसे, जिन सरों में या जिनके दिमागों में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें उठती हैं, जो फितने बनाकर दुनिया में फैलाते हैं, तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें, आज तो ये हमारे हाथ आए हैं, ये ऐसे ही जैसे कोई सांप आपके हाथ में आ जाए और फिर छोड़ दें, चलो कोई बात नहीं, अब हमें कुछ ना कहना। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि इनको कत्ल किया जाए, बल्कि जो जिसका रिश्तेदार है उसको दिया जाए और वह अपने रिश्तेदार को ख़ुद कत्ल करे। अल्लाह के नबी ने उमर की बात ना मानी और अबू बकर वाली राय जो थी उस पर अमल किया और कह दिया कि ठीक है भाई, तुम लोगों को माल गनीमत दिया जाएगा। हज़रत उमर कहते हैं कि ये बात हुई, उसके बाद चला गया। उसके अगले मौके पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि अबू बकर भी रो रहे हैं और नबी सल्लम भी रो रहे हैं। इन दोनों को रोता देखकर मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा, मुझे वजह तो बताइए। तो फिर बताया कि उमर, ये आयत उतरी है जितनी कि अगर ये इज्तिहादी मामला ना होता तो अल्लाह कहते हैं इसी पर अल्लाह ताला की पकड़ आ जानी थी कि तुमने माल गनीमत लेने के लिए, तुमने उनका फ़दिया लेने के लिए उनको नहीं मारा, तो अल्लाह का फ़ैसला कहता कि मार दिया जाए, लेकिन पकड़ इसलिए नहीं हुई कि इज्तिहादी गलती थी, जिसमें वाज़े हुक्म ना हो फिर इंसान ठीक भी कर ले तो भी नेकी मिलती है, बल्कि दो मिलती हैं, और गलत तो एक नेकी बहरहाल मिल जाती है। इसलिए अब वो जो कैदी थे उनको बचाने में हिकमत एक और थी, और वो क्या कि उनको बाद में ईमान मिलना था। इसीलिए अगली आयत में फरमाया, या अय्युहन्नबी यकुल लिमन फी अय्दीकुम मिनल असरा, ए नबी उन लोगों को कह दीजिए जो आपके हाथ में कैदी बनकर आए हैं कि अगर तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो वो तुम्हें इससे बढ़ चढ़ कर देगा जो तुमसे लिया गया, और तुम्हारी खताएं माफ़ करेगा, और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो आपके साथ ख़यानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वो तो अल्लाह के साथ ख़यानत कर ही चुके हैं, चुनाचे इसी की सज़ा अल्लाह ने इनको ऐसे दी कि आपके काबू में आ गए, अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। ये आयत कहते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में थी, बल्कि वो ख़ुद भी कहते हैं क्योंकि ये कैदियों में थे, जब इनसे फ़दिया मांगा गया तो इन्होंने थोड़ी सी पसो पेश की। इनके बारे में आता है कि थोड़ी सी तबीयत में बुखल था या कंजूसी कह लीजिए। तो अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि देखो, आज अगर तुमसे कुछ लिया जा रहा है, कल जब इस्लाम मिलेगा तुम्हें फिर सारा मिल जाएगा। और वो इस आयत का तस्करा करके कहा करते थे कि बिल्कुल अल्लाह का कहा सच हुआ, मैंने बदर के मौके में अपने फ़दिये में जो पैसा दिया उसके बाद चंद ही जंगों के अंदर मुझे वो सब कुछ वापस भी मिल गया, और अल्लाह किसी का कुछ नहीं लेता। इंसान देने वाला बने, अल्लाह ताला को परवाह भी नहीं है, जब जान छुड़ाते फिरते हैं ना, फिर अल्लाह कहता है अब जाते हो तो किधर जाते हो, का अगर खैर है तो देगा। और बहुत सारे जो बदर के कैदी थे फिर वो बाद में मुसलमान हो गए। इसके बाद ओवरऑल मुसलमानों ने उस दौर में जो कुर्बानियाँ दी, उनके जो चार मुख्तलिफ गिरोह बन गए थे उनका तस्करा है, इन्नल्लज़ीना आमनू, फिर व हाजरू, फिर व जाहदू, कैसे, बी अमवालिहिम, और चौथी बात, व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में जाने लड़ाई और अपने माल खपाए। ये कौन है, यहाँ तक इन चारों के नीचे आप लिख सकते हैं मुहाजरीन, मक्का छोड़कर आए, घर छोड़े, हिजरत की, घर माल सब लगा और अब इसके बाद वल्लसीन आवो व नसरू लाइक बादहुम औलिया उबाद, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, ये लोग हैं अंसार मदीना। वही दरअसल एक दूसरे के दोस्त हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुस्सलाम में नहीं आए, ये तीसरा गिरोह था। सच्चे मोमिन थे लेकिन अपने घरों की और कारोबार की मोहब्बत में मक्का नहीं छोड़ा। जैसे पाकिस्तान बन गया तो कुछ लोग अपनी तिजारत की वजह से इंडिया से ना आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ईमान लाने के बावजूद दुनियावी फ़ायदों के लिए दारुस्सलाम में नहीं आए, हिजरत नहीं की, तो इनसे तुम्हारा विलायत का कोई ताल्लुक नहीं। यानी अब आप उनसे कोई दोस्तियाँ ना रखें, अगर उनको मुश्किल हो तो आप मदद ना करें। हाँ, एक ही क्राइटेरियन है कि जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाए। कितना बेला कानून है अल्लाह का, दीन को तन्हा छोड़ के अपने घर बार सजाने संवारने को ज़िंदगी समझना, ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। हाँ, अगर वो भी आ जाते हैं दीन के मामले में कभी आपसे मदद मांगने, तो इनकी मदद करना आप पर फ़र्ज़ है। मक्का में रह तो गए, ठीक है, आप इनको इनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन कभी उन पर कोई मुश्किल पड़े, कोई इनको मुश्किल आए, तो मुसलमान बहरहाल होने की वजह से आप इनकी मदद करेंगे, लेकिन किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं जिनसे आपका मुआहदा हो। हाईलाइट करके देखें अल्लाह किसके बारे में कह रहे हैं। यानी वो मुसलमान मक्का में हैं, बिलफर्ज़ उनका कुरैश से मुआहदा हो चुका है। मुसलमानों का कुरैश से मुआहदा सुलह हुदैबिया में कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अब अगर कुरैश मक्का में फंसे हुए मुसलमानों को तकलीफ़ दें और वो मक्का वाले मदीना वालों से मदद तलब करें तो का नहीं होगा। काश आज के मुसलमान इस कानून को समझें। कितना अल्लाह के नबी वादा पूरा करना, कमिटमेंट पूरी करना, इसको कितनी अहमियत देते थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाने में अल्लाह के नबी से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं दिखता। अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है वो मुसलमान है, लेकिन आपने काफिर को कह दिया कि अब हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। इतने ज़बरदस्त किस्म के ये असूल हैं कि जो कौमों को रूज भी देते हैं, और इनसे एराज़ की वजह से कौमें जो हैं वो पस्तियों का शिकार हो जाती हैं। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसको देख रहा है, अल्लाह को खूब पता है। इसके बाद वल्लज़ीन कफरू, जो लोग हक के मुनकिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं किसी भी एंगल में, वो तो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बरपा होगा। सच है कि झूठ? आज हम मुसलमानों को देखें तो काफिर तो एक दूसरे की मदद खूब कर रहे हैं, और आज मुसलमान जो है ये नहीं करना चाहते, नहीं पाना चाहते, तो फिर आप देख लीजिए कि मुसलमानों को क्या मिल रहा है। आज हर एक अपने आप को देख सकता है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम वालों को जो कवानीन दिए थे उन्होंने उनको झुटलाने के बाद क्या किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जिद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही हैं सच्चे मोमिन। इस आयत को तो देख के ऐसे लगता है या मुहाजिर या अंसार, या मुहाजिर बनो या अंसार बनो, इन्हीं कामों में अल्लाह की मदद है। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिन हैं, इसके अलावा बाकी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल कवानीन बना दिए कि सच्चे मोमिन बनना है तो ये काम करने पड़ेंगे। मिलेगा क्या? लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है, यानी इनकी ख़ताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। रह गए बाकी लोग जो थोड़े से इनके बाद आए, तो क्या है? वल्लज़ीना आमनु मिन बादु व हाजरु व जाहदु माकुम, और वो लोग जो बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, वो भी तो तुम ही में शामिल हैं। मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं, और यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। तो क्या बता दिया गया कि खून के रिश्ते कब होंगे? जब दीन का भी रिश्ता होगा। जब इब्तदाई दौर था तो कुछ रिश्तेदार दीन पे थे, कुछ बेदीनी पे थे, तो अल्लाह ताला ने कवानीन दूसरे कर दिए। कहा नहीं, अब कोई मरता है तो उसकी विलायत, उसकी विरासत में से हिस्सेदार जो होगा वो दूसरा मुसलमान होगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब सब ख़ानदानों में इस्लाम आ गया, लोग दीन पे आ गए, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर कानून बदल दिया। तो खुलासा क्या है पूरी बात को अगर आप पढ़ें, एक स्ट्रेच में हमने पढ़ा है, मेरा तो दिल इस तरह से अंदर से पसीज रह के, पता नहीं हम इस्लाम का ये मिजाज समझ पाते हैं कि नहीं पाते, लेकिन बहुत बड़ी रियलिटी है कि इस्लाम की कीमत पे ताल्लुकात जब बनेंगे फिर इंशाल्लाह बात होगी। यहाँ पे रुक पूरा हुआ, सूरत भी पूरी हुई, अगली सूरत बहुत ही ज़बरदस्त बाकी सूरतों की तरह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।